मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 11 जुलाई 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही फ्रेंड्स, मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 25 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं मनीष कुमार, आप कोल्ज की झारखंड से हैं। दीपू कुमार, आपका गांव है अनंतदीह, जिला कोडरमा झारखंड से हैं। पूजा कश्यप, आपका जिला है बालाघाट मध्य प्रदेश से हैं। राकेश रंजन बरोहिया बिहार से हैं। वाईपी सिंह मुंबई से हैं। अखिलेश प्रजापति, आपका गांव है सगासोट, जिला चतरा झारखंड से हैं। भारत भूषण, आप नागपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से हैं। कोमल कुमार, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। रविशंकर, आपका गांव है मछली शुक्ल का पुरवा, जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। रोशन सिंह, बरेली उत्तर प्रदेश से। सौरभ पटेल, गांव है आपका सिहोरा, जिला जबलपुर मध्य प्रदेश से। रजनीश कुमार, आपका गांव है धामसेना, जिला सहरसा बिहार से। राजेश कुमार, आपका गांव है थवरा, जिला मुजफ्फरपुर बिहार से। प्रवेश कुमार, आप हैं देवघर झारखंड से। अविनाश कुमार, आपका गांव है माधोपुर, जिला नालंदा बिहार से। विकास वर्मा, आपका गांव है पथरिया, जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ से। अनीता मंडलोई, आपका गांव है देहरी, जिला धार मध्य प्रदेश से। शिव कुमार यादव, आप बयांगा गांव से हैं, जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से। वसुंधरा गिरी, बोकारो स्टील सिटी झारखंड से। कुमार गौतम, चेरिया बरियारपुर बिहार से। आरती बोपचे, बालाघाट मध्य प्रदेश से। साहिल भाटिया, फरीदाबाद हरियाणा से। अभिनव कौशिक, आपका गांव है सबैला, जिला सहरसा बिहार से। और इसी गांव और जिला सहरसा बिहार से हैं पप्पू कुमार। और अंतिम मित्र हैं राजा कुमार, गांव जगदीशपुर, जिला बेगूसराय बिहार से। तो मनीष, दीपू, पूजा, राकेश, वाईपी सिंह, अखिलेश, भारत भूषण, कोमल, रविशंकर, रोशन, सौरभ, रजनीश, राजेश, प्रवेश, अविनाश, विकास, अनीता, शिवकुमार, वसुंधरा, कुमार गौतम, आरती, साहिल, अभिनव, पप्पू कुमार और राजा कुमार, आप सभी 25 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे एक अलग तरह के विषय पर बात करने जा रहा हूं, जो नो डाउट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिहाज से कतई कम महत्वपूर्ण नहीं है और ये निबंध के लिए भी बहुत ही मौजू विषय है, बहुत ही सटीक विषय है। और मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा कि किस तरह से जो भारतीय समाज है हमारा, वो एक जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजर रहा है और उसके क्या सिम्टम्स हैं, इस पर मैं थोड़ी सी बात आपसे करूंगा। लेकिन आइए इससे पहले थोड़ी सी हम न्यूज देख लेते हैं। एक खबर आपने सुनी और आज के अखबारों में पढ़ी भी होगी, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि कार्य सुगमता कह लीजिए, व्यवसाय सुगमता की दृष्टि से आंध्र प्रदेश को देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। यानी कि आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां बिजनेस करना, उद्योग लगाना अपेक्षाकृत सबसे आसान है ना। जो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस है, आप देखिए कि राष्ट्र के स्तर पर भी होता है कि किस देश में बिजनेस करना आसान है। जब हम कहते हैं बिजनेस करना आसान है, तो उसका मतलब यही है कि जो भी आपको सरकार से स्वीकृति चाहिए और दूसरी व्यवस्थाएं चाहिए, वो कितनी आसानी से हो जाती हैं। मित्रों, इसके बाद जो दूसरा स्थान है तेलंगाना का, और मैं आपको यह भी बता दूं कि फिर जो जितने भी स्थान हैं उन सब में बहुत थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, थोड़ा थोड़ा ही फर्क है। लेकिन चलिए, आंध्र प्रदेश पहला मतलब पहले स्थान पर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और खासकर जो स्टूडेंट आंध्र प्रदेश से हैं और स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो मालूम ही होना चाहिए, और बल्कि थोड़े से डिटेल में मालूम होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश सरकार की इसके बारे में क्या नीतियां हैं जिसकी वजह से उसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन इसका एक बहुत ही सकारात्मक पक्ष यह है कि इससे होगा क्या कि राज्यों के बीच भी एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा शुरू होगी, मतलब राज्य चाहेंगे कि हम पहले स्थान पर आए, हम पहले स्थान पर आए। और आप महसूस कर रहे होंगे कि पिछले 3-4 सालों से राज्यों के बीच भी इस तरह की प्रतिस्पर्धाओं को महत्व दिया जाने लगा है, जैसे कि कौन सा नगर सबसे स्वच्छ नगर है। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में शहर चाहेंगे कि हम उसमें पहले स्थान पर आए, दूसरे स्थान पर आए, या जिस स्थान पर भी हैं तो अगली बार हमारी रैंकिंग बेहतर हो। तो इस तरह से प्रतिस्पर्धा का जो वातावरण बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दिशा की ओर हमारे कामों को ले जाएगा। मित्र, तो दूसरे खबर के तहत भारत और दक्षिण कोरिया को लेकर के खबरें थी, आपने सुनी होगी। और कल अगर आपने डीडी न्यूज देखी हो रात के, तो उसमें एक्सपर्ट बहुत अच्छे तरीके से दक्षिण कोरिया और भारत के संबंधों के बारे में बता रहे थे। देखिए, होता क्या है कि मैंने शुरू में कहा था कि दक्षिण कोरिया और भारत के संबंधों पर अलग से प्रश्न पूछा जाए इसकी संभावना कम है, लेकिन अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं ही पूछा जाएगा, लेकिन संभावना कम है। लेकिन जब आप इस तरह के न्यूज देखते हैं तो आपको एक पूरा का पूरा दुनिया का सिनेरियो पता लगता है। जैसे कल के न्यूज में आपने सुना कि दक्षिण कोरिया बहुत ही डेवलप्ड कंट्री में है और उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है। इस तरह की बातें जब हमारे दिमाग में आ जाती हैं तो फिर इनका इस्तेमाल हम दूसरी चीजों में भी कर पाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है सिविल सर्विस के अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए। दोस्तों, दक्षिण कोरिया के संदर्भ में आपने एक नाम सुना होगा, रानी सूर्यरत्ना का स्मारक। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि एक नाम आया है भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 2000 साल पुराने सांस्कृतिक संबंधों की कड़ी के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो कभी कभी होता है कि प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, है ना, तो आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद आज मैं आपको एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं शहरी जीवन को लेकर के। शहरी जीवन, आप देख रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दिल्ली है ये हो क्या रहा है। दिल्ली है वो कचरे का ढेर बनता चला जा रहा है और मुंबई बाढ़ में डूब रही है। दोनों स्थिति आप देख रहे हैं और ये दोनों हमारे बहुत ही श्रेष्ठ महानगर है। दिल्ली हमारी राजधानी है और मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है और पॉपुलेशन में ये नंबर एक नंबर दो पर हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि एक तरफ हमारे शहरों की ये बदहाली है और दूसरी तरफ हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तहत कितने सुधार की बात करते हैं। लगातार कोशिशें हो रही हैं, संविधान में बकायदे संशोधन किया जा चुका है, जो लोकल बॉडीज हैं उनको अधिकार भी दिए जा रहे हैं, लेकिन सच पूछे तो समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। मित्रों, ये जो शहरी जीवन है आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारे डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसमें हम देख रहे हैं कि लगातार गांव से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है, यानी कि शहरों पर आबादी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हम शहरों को संभालने की स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहे हैं। और इसका जो मूल कारण है वो है कि हम जो शहरों की जो योजना होनी चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो रही है, और जो योजना बना भी लिए जाते हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। उसका कारण है दुनिया भर के राजनीतिक और आप कह लीजिए दूसरी तरह के दबाव। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक मैं आपको और आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, वो जनसत्ता का आर्टिकल, आभासी दुनिया की विकृतियां। आभासी दुनिया यानी कि वो दुनिया है नहीं, लेकिन आपको आभास होता है कि दुनिया यही है। इस आर्टिकल को आप सब पढ़िएगा। देखिए, अब आर्टिकल की चर्चा मैं इसलिए करने लगा हूं कि बहुत से मुझे इस बीच में मेल मिल रहे थे और स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते थे कि सर आप थोड़ा सा आर्टिकल्स के बारे में भी बता दीजिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं समझ सकता हूं आप लोगों की ये मांग बिल्कुल जायज थी, तो उसे मैंने शिरोधार्य करते हुए अब इस तरह की शुरुआत की है। तो आप ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा और देखिएगा कि उससे किस तरह के मनोवैज्ञानिक संकट हमारी जनरेशन में पैदा हो रहे हैं और ये कितना खतरनाक है। तो इस पर आप चाहें तो एक छोटा सा नोट भी बना लें, यह भी टॉपिक मुझे महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर कि किस तरह से भारतीय समाज में एक तेजी से बदलाव आ रहा है। मैं आपको कुछ कंटेंट देता हूं। नो डाउट कि मैंने इस विषय को चुना है इसलिए कि आप देखते हैं कि देख रहे हैं कि आपके हमारे सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिकता पर सुनवाई शुरू हो रही है, समलैंगिकता पर, होमोसेक्सुअलिटी पर, जिसे एक प्रकार से अभी तक अपराध माना गया है। ये अपराध है और दूसरा इसे प्राकृतिक विकृति भी माना जाता है, इसे विकृति भी कहा गया है, प्रकृति नहीं है, यह विकृति है। ये माना जा रहा है। खैर, विकृति है या नहीं है ये एक थोड़ा सा अलग तरह का विषय है, लेकिन सवाल यह है कि ये अपराध हो है या नहीं है। अभी तक तो ये अपराध था, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, तो उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। और इस बीच में जो बहस होगी, जो तथ्य दिए जाएंगे अपने अपने पक्ष में, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप उनमें से जो थोड़े से वजनदार तथ्य हैं उन्हें नोट करते चले, मतलब अपनी कॉपी में दो पेज रख लें, एक जो समलैंगिकता को अपराध मान रहे हैं वो क्या बात कह रहे हैं, और दूसरा वे जो अपराध नहीं मान रहे हैं वे अपने क्या तर्क दे रहे हैं। इस तरह से आप इकट्ठा करते चलिए, जब इकट्ठा करते चलेंगे तो आपके पास अच्छी खासी सामग्री एकत्रित हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर भारतीय समाज खुले रूप में समलैंगिकता पर बात कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं समाज के बदलते हुए विचारों का प्रतीक है, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि समाज खुल रहा है। और देखिए, इस बीच में दूसरी भी घटनाएं हुई है। दरअसल सिविल सर्विस के लिए आपको इन बातों को ध्यान में रखना होता है। एक तरफ आप देखिए कि किस तरह से तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहरा दिया है, और अब संविधान की पीठ, बकायदे संवैधानिक पीठ बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की, जो हलाला और आपके बहुविवाह प्रथा पर विचार करेगी। तो यहां भी आपको समाज के कहीं ना कहीं खुले होने का संकेत आपको मिलेगा। फिल्मों में आप देख रहे हैं कि एक अलग तरह की चीजें हो रही है। अभी जो संजू फिल्म आई है उसमें संजय दत्त को जिस तरीके से ग्लैमराइज किया गया है, बावजूद इसके कि उसके चारित्रिक दोष हैं, तो अगर चारित्रिक दोष इतने होने के बावजूद समाज उससे उसको एक्सेप्ट करता है और कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि उसके संकटों के साथ सहानुभूति रखता है, उसके साथ सहानुभूति रखता है जो दूसरे संकट उसमें पैदा हुए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं समाज के विचारों में आने वाली तब्दीलियों को सूचित करता है। एक बहुत अच्छी घटना जून के अंतिम सप्ताह की शुरुआत में घटित हुई थी मित्रों, सऊदी अरब में। सऊदी अरब की एक खबर आई थी, आप अगर 25-26 जून के आसपास के अखबार में देखें कि वहां के जो सुल्तान है, वहां के जो राजकुमार है, कह लीजिए जो प्रिंस हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अपने यहां की महिलाओं को गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता दे दी, यानी कि महिलाएं भी कार ड्राइव कर सकती है। दुनिया का अभी तक एकमात्र देश था जहां महिलाओं को कार ड्राइव करने की इजाजत नहीं थी। अब आप देखें कि वो एक इस्लाम देश, और सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो एक तरीके से इस्लाम की जन्मभूमि है, सुन्नी बहुल राष्ट्र है, वहां इस तरह का आपको खुलापन दिखाई दे रहा है, वहां भी एक खुलापन, तो उसकी बयार भी साउथ एशिया में आएगी, तो भारत में भी उसकी बयार पहुंचेगी, उसके संदेश पहुंचेंगे। और वैसे भी सऊदी अरब में आपको मालूम है कि लगभग 50 लाख भारतीय काम करते हैं, वो भी एक तरह से संदेशवाहक होकर के भारत में आएंगे। तो इस तरह से जो भारतीय समाज है अब वो मध्यकालीन, या कह लीजिए कि मध्यकालीन के आगे अगर हम और आगे चले आए, आधुनिक समाज से भी अब आधुनिकतम समाज होने की ओर बढ़ रहा है। अब कितना सही है कितना गलत है वो एक अलग मुद्दा है, उस पर आप अलग से विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल ये इस बात को दिखा रहे हैं कि हमारा जो समाज है वो धीरे 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 काफी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। तो मित्रों, इन सब से संबंधित जो घटनाएं घटित होती हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको चाहिए कि आप उन्हें बीच बीच में नोट करते जाएं, तो ये जानकारियां आपको निबंध लिखने में भी बहुत मदद करेंगी, और साथ ही साथ सिविल सर्विस का जो फर्स्ट पेपर है, प्री आपके मेन्स का जो फर्स्ट पेपर है, उसमें इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सब आप लोग देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और इनमें से दो दोस्तों के नाम मैं ले रहा हूं, वो है मोनिका और धनराज सुमन, इनके प्रति भी आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।